उसके बाद एक दूसरी सोच आई जो बिल्कुल हमारे ये करीब के माजी के जो उलमाए कराम थे वो कहते थे कि नसख होता है, और बहुत सारे नसख की किस्में दी उन्होंने कि ये भी हुई वो भी हुई मौके महल के साथ। आज जितनी रिसर्चेस हो रही हैं, बल्कि अब तो ये तक कहा जा रहा है कि यहाँ मनसूख से मुराद तदरीज है, दीन को स्लोली स्लोली ग्रेजुअली पेश किया। शराब पहले हलाल थी, फिर थोड़ी मकरूह हुई, फिर उसके बाद हराम कर दी। इट्स फाइन, पहले औरत की इद्दत साल थी तो फिर 4 माह दसिंग कर दी। तो सारी बात का खुलासा क्या निकला कि जैसे आप किसी इंसान को बहुत सारी बुराइयों में मुबतला देखें तो क्या करें। एक शख्स था, उसने नबी सल्लम से आके पूछा, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, शराब भी पीता हूँ, गुनाह भी करता हूँ, क्या करूँ? आपने कहा, कोई बात नहीं, करीब तेरी नमाज तेरे से गुनाहों को हटा देगी। ठीक है, आज भी यही करें, डू समथिंग। ओके, शुरू तो करो, और दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप दूसरों को परेशान कर देंगे। आज लोग कुरान पे बातें करते हैं, शायद आपको अंदाज़ा है कि नहीं, लोगों ने इस कुरान के ऊपर तनकीद पे वेबसाइटें बना दी। हज़रत इब्न अब्बास से किसी ने कहा, तुम्हारे कुरान में तो बहुत शक है, क्यों? एक तरफ क्या है कि लोग कलाम नहीं कर सकेंगे क़यामत के दिन, चुप होंगे सारे, है कुरान में आयत। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है, एक आयत है, कहते हैं देखो वो उस दिन जाके अल्लाह के सामने झगड़ रहे होंगे। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कहने लगे, तेरे इल्म की कमी है, ये वो उस वक्त होगा, क़यामत के दिन के इब्तदाई मरहलों की बात है या आखिरी मरहले की बात है। तो बात समझ गए, तो इन सारी बातों के लिए एक वसी इल्म की जरूरत होती है। इसीलिए यहाँ जो कह लें कि तौरात को मनसूख किया गया कुरान के जरिए, ये बात सच है, इसमें कोई शक नहीं है। आज देखिए बहुत सारी तौलाद भुला दी गई है, उनकी अपनी किताबों में नहीं है। रियल बाइबल अगर आज की आप उठाएं ना, कुरान से 5 गुना बड़ी है, लेकिन उसमें आखिरत का जिक्र ही कोई नहीं है, सब खत्म हो गई। कुरान में हजरत मूसा का तस्करा पढ़ते हैं, आपको अल्हम्दुलिल्लाह हर थोड़ी बात के बाद एहसास होता है कि आखिरत की जवाबदेही होगी। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने अलम तालम कह के आखिर में बता दिया कि मुझे पता है किस हुक्म को लेना है किसको नहीं लेना। देखिए ये जिंदगी की खूबसूरती भी है, आप सुबह कहते हैं आज मैं आलू गोश्त बना लेती हूँ, फ्रिज खोलते हैं तो आपको कोई और चीज समझ आती है कि पहले वो बना लूं क्योंकि भिंडियां वो खराब हो जाएंगी, आलू तो 2 दिन और भी चलेंगे, तो आप कहते हैं नहीं मैं भिंडियां बना लेती हूँ। शौहर साहब आए, क्या पका है? भिंडियां। वो कहते हैं सुबह तो तुम कह रही थी आलू गोश्त पका है, तो आपने क्या किया, आलू गोश्त पकाने का इरादा मनसूख कर दिया और भिंडियां बना ली। अब आप कह सकते हैं कि जरूरत के तहत मैंने ऐसा कर लिया, या आपने सोचा है सब्जी बनाएंगे, फोन आ गया मेहमान आ रहे हैं, तो आप कहते नहीं अब गोश्त बनाए, तो क्या गुनाह हो गया? एक बड़ी बात याद रखिए, जो बात करता है ना वो बदल सकता है। आज एक ऑर्डर दिया गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने कल उसको वापस ले लिया, इट्स फाइन, बट मैं और आप नहीं अल्लाह की किसी बात को मनसूख कह सकते। बड़ी जरूरत की बात है जो लोग आज कुरान की बहुत सारी बातों को पीछे करते हैं। तो लिहाजा सारी बात में से खुलासा हमें समझ आ गया कि अल्लाह ताला ने कभी ये नहीं कहा कि पहले इद्दत 4 महीने 10 दिन थी तो अब 1 साल हो गई है, ना थी बिखैर मिनहा, तदरीज ही हुई, आसानियाँ ही की अल्लाह ताला ने, और ये सब करके मुझे आपको भी तबलीग की बेहतरीन हिकमतें भी अता कर दी। किबला तब्दील हुआ, पहले काबा था किबला, फिर उधर बैतुल मकदस हो गया, बैतुल मकदस से फिर काबा बन गया। तो ये मौजू इंशाल्लाह पूरे कुरान में हम चलते ही जाएंगे, देखते जाएंगे। फिर इसी तरह एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि वक्त के साथ तकाजे बदले। मसलन जैसे हजरत आदम के वक्त में अब बच्चे पैदा होते थे ना, अब सारे सगे बच्चे थे, तो शुरू में बहन भाई का निकाह जायज था, अब जब एक खास तक बात हो गई अब हराम कर दिया। हजरत नूह के बारे में कहते हैं जब कश्ती से उतरे तो तमाम हैवानात उनके लिए हलाल थे क्योंकि मजबूरी थी, कुछ भी नहीं था खाने को, अब वो हुक्म बदल गया। 2 बहनों का निकाह पिछली शरीयतों में किसी हद तक जायज था, बनी इसराइल और उनकी औलाद पे हलाल था, तौरात के जरिए उसको हराम कर दिया गया। हजरत इब्राहिम को बेटे की कुर्बानी का ख्याल दे दिया कि ज़िबा कर दो, आज ये नहीं है, आज नहीं होगा। बनी इसराइल के लोगों ने बछड़े को पूजा, कहा उनकी जाने खुद मारो, आज कोई किसी शिर्क करे तो क्या वो अपने आप को कत्ल करेगा? नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें जो इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बात है और इसको सीखना भी चाहिए। और ये जो आखिर में कहा ना कि वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलीयिन वला नसीर, ये असल में इसी बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह को इख्तियार दो कि उसने अपनी कायनात में चेंज रखा। आप देखिए 4 दफ़ा तो साल में नासिख और मनसूख होता है, गर्मी मनसूख होती है तो सर्दी आती है ना, पत्ते लगे पत्ते उतर गए, पत्तों का रंग बदल गया, इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर। तो एक ऑथर अपनी बुक बनाता है, फिर अगले साल जब उसका नया एडिशन लाता है उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देता है, کچھ پچھلے سال میں سے کم کر دیتے، اس کی مرضی ہے۔ تو اصل میں یہ اللہ کے اختیار کو ماننے والی بات ہے، اس لیے کبھی بھی ان باتوں پہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اب آخری حصہ شروع ہو رہا ہے۔ ام تریدونا، کیا تم چاہتے ہو؟ کون؟ صحابہ کرام کو کہا گیا، یعنی تریدون جمع کا لفظ ہے۔ ان تسلو، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، رسول سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کما جیسے کہ، سئلا، سوال کیے گئے، موسیٰ، موسیٰ سے، من قبلو، اس سے پہلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو سوالات کیے گئے تھے، کیا اب تم بھی اپنے نبی کے ساتھ یہی سوال جواب شروع کرو گے؟ تو سن لو، وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو کوئی بدل ڈالے کفر کو، بالایمان، ایمان کے بدلے، یا پھر دیکھیں تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیا بک رہا ہے؟ با کے بعد کیا لفظ ہے دیکھیں؟ ایمان، کرنسی کیا بنی؟ ایمان، مل کیا رہا ہے اس کے بدلے؟ کفر، کیا ہوگا؟ فقط دل سوا سبیل، وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ سوا کہتے مڈل کو، سوا مساوی، یہاں سبیل کے ساتھ سوا کیوں آیا؟ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، تین لین ہوتی ہے نا، پہلی، آخری اور بیچ کی۔ پہلی میں گاڑی چلائیں گے، کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر بعد اگلا رکے گا، اس نے باہر نکلنا ہے، ایگزٹ لینا ہے، آپ رک جائیں گے۔ آپ آخری میں جا رہے ہیں، ادھر سے کسی نے ایگزٹ لینا ہے۔ سب سے زیادہ نیچرل کون سا راستہ ہوتا ہے تیز چلنے والوں کے لیے؟ مڈل لین۔ سواد سبیل کیا ہے؟ دین کا وہ راستہ جس میں بندہ کوائٹ سیدھا چلتا جائے، وہ سواد سبیل ہے۔ یہاں یہود کے اب ایک تیسرے شوشے کی طرف بات ہے۔ اللہ کے نبی کی محفلوں میں جب آتے تھے نا، تو دل میں سوال لے کر آتے تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی، لیکن آج بھی مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو لیکچر سننے کا شوق نہیں ہوتا، یا سوال جواب یا دعا کرانے۔ وہ سوال پوچھنے آئی تھی، چلو میں آئی تھی کہ ذرا دعا میں شامل ہو جاؤں۔ بھائی علم لیجئے، پھر سوال پوچھئے تو فائدہ ہوگا۔ تو سوال بہت سارے اٹھا کر بعض دفعہ صحابہ کے دلوں میں بھی شک ڈالتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہاں دیکھیں، پھر ہم تریدون، تم چاہتے ہو، صحابہ تو نہیں تھے ایسے، کون تھے؟ یہود۔ یا تو صحابہ کے ذریعے سے سوال پوچھواتے تھے، جیسے رائنہ میں کہا نا، صحابہ کو اصل میں کہنا یہود کو مراد تھا، تو کیا پتا چلا کہ بہت سوال نہیں پوچھنے چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ کوئسچن آنسر سیشن نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، پہلے علم ہو، ادب کے ساتھ لا تقول رائنہ، محفل کا احترام کیا جائے، پوری بات سن لی جائے، پھر کوئی بات نہ سمجھ آئے نا، تو پھر طالب علم کا حق ہوتا کہ سوال پوچھے۔ اور ابھی استاد بولے اور شاگرد وہ سوال پوچھ لے جو کہ ابھی بات ہی نہیں چھیڑنی، تو ترتیب بدلے گی۔ جس نے بات کرنی ہوتی ہے نا، اس نے ایک ترتیب سوچی ہوتی ہے۔ بیچ میں سوال کوئی پوچھے، وہ بات ادھر امریکہ نکل گئی، تھوڑی دیر پر بات کشمیر کی ہونے لگ جائے گی، تیسری بات جو جاپان کی شروع ہو جائے گی۔ بیچ میں بولنا ایک تو ڈس ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں شروع میں سوال اٹھا تھا، پھر وہ بعد میں اس کا خود ہی جواب مل گیا، اگلے ہی جملوں میں اس کا جواب خود ہی مل جاتا ہے۔ تو بہت سوال جواب والا ذہن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ماننے والا ذہن ہو، ایکسیپٹنس مائنڈ بنائیے۔ یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ کی تفسیر سن رہے ہیں، 10 باتیں سنی، 3 سوال ذہن میں آ گئے، لیکن ایک بات ایسی آج مل گئی کہ جس نے آپ کی سوچ بدل دی، وہ ایک بات لے کے اٹھ کے چلے جائیے۔ قبولیت ہو جائے نا، آپ بات کو ماننے والے بن جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ 100% سوالوں کے جواب لے کر اٹھیں یہاں سے۔ تو اسلام کو بہت زیادہ سوال جواب نہیں پسند، کیونکہ بچہ آپ سے بڑوں والے سوال کرے۔ 6 سال کا بچہ کہ ابو آپ کی کتنی پے ہے، ابو آپ کس بینک میں پیسے رکھتے ہیں، ابو آپ اپنے بینک کا ذرا کوڈ تو دیجئے، ابو کو اچھا لگے گا؟ ہاں، آپ بڑے بڑے سوال پوچھیں، ہاں یہ خرچہ کیسے پورا ہوگا، بچے کو آپ 100 کرون بھی مشکل سے دیں اور اس کو آپ پوچھیں اس گھر کا کرایہ کتنا، 10,000، ہوئے اتنا پیسہ کیسے دیتے ہیں، تو آپ کہیں گے بیٹا آپ بچے بنو، آپ کو کیا، آپ یہ پوچھو گھر میں کینڈیز کتنی ہے، آپ کی یہ سوچ ہے۔ تو چھوٹا ذہن جب بڑی باتیں پوچھ لیتا ہے تو وہ درست نہیں ہوتی۔ اور خاص طور پہ اس میں ایک اور بھی اینگل تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سا وقت لوگ لے لیتے تھے، اس کی جواب آپ کو ملے گا جا کے سورت مجادلہ میں، اتنا وقت لیتے تھے، کہتے تھے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھنا ہے۔ اب اللہ کے نبی کے پاس اور بڑے کام ہوتے تھے، پریشانی ہوتی تھی، وقت ضائع ہوتا تھا۔ اچھا ابو بکر کسی سوال کا جواب دے دے نا، کہتے تھے نہیں ہم نے خود پوچھنا ہے۔ یہ بھی یہاں روکا گیا کہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سوال مت پوچھو، وقت لگتا ہے ان کا، تم غیر ضروری سوالات پوچھ کر کہیں अपना नुकसान ना कर लो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुकसान ना कर दो। दूसरी बात है कि कुछ सवाल होते हैं इल्म लेने के लिए, कुछ होते हैं फितने खड़े करने वाले, मसलन कज़ा उमरी के बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा, औरत और मर्द की नमाज में क्या फ़र्क है? ये 11वीं शरीफ का क्या हुक्म है? जहां कोई आपसे ये सवाल पूछे, और कई इतनी भोली औरतें होती हैं, कई नई जगह दर्स होना आते ही पूछ लेंगी। कभी मैं लोगों से पूछी ना, शुरू में आप बात करें, मेरी आदत है कि जरा देखूं ये कौन है, ये घरेलू खवातीन है, ये जॉब करती, ताकि मैं उनके लेवल की बात करूं। तो कुछ वो पहले से सुन के आई होती है ना कि ये बाजी जो आई है जरा इनको चेक करके आना, ये इनका क्या हुक्म है, तो वो वहीं शुरू हो जाएंगी। आज जैसे मैं सोच के आई थी, आप एक सवाल का जवाब दे देंगी, तो मैंने कहती हूँ लेक्चर के बाद दूंगी, लेकिन सवाल आप अभी पूछ लें, ये कज़ा उम्री का क्या हुक्म है? जिस वक्त ये दो चार लफ्ज बोले ना, मैं समझ आती हूँ ये आई नहीं है, ये भेजी गई है, और इनका नुक्ता क्या है। तो बहुत दफा मशकूक करने के लिए होता है, इसलिए मना कर दिया गया कि, और वो रसूल थे, आज मैं आप तो एक आम इंसान है ना, तो इस्लाम क्या कहता है। और दूसरा एक बहुत बड़ा नुकसान था, ये नोट कीजिएगा आप, शरीयत अभी आ रही थी, अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी के सवाल की वजह से अगर एक हलाल चीज़ हराम हो गई तो वो मुसलमानों के हक में बहुत बुरा इंसान है। मसलन आप देखिए, आपने फरमाया कि रमज़ान में हर नेकी का अजर 70 गुना, अब ये बात आप कहें और शादी की वजह, अच्छा फिर हर गुना का भी तो 70 गुना ही होगा ना, तो अल्लाह के नबी कहते हैं हाँ, तो गुनाह की शिद्दत बढ़ जाती है ना, ये मुराद है। इसलिए ला यानी सवालात नहीं पूछने चाहिए, और इल्म लेने के भी अदब और मैनर होते हैं, और इससे फिर एक औरत के सवाल पूछ के ना मानेंगे तो फिर ज़्यादा पकड़ होगी। और यहाँ नोट करें आपने, मैं यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान, तब्दीलियाँ हो रही हैं। बाज़ दफ़ा हम अपने आप को रजिस्टर में मुसलमान कह रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ कुफर लिख चुका होता है, और हाल क्या होता है कि अपने आप को इंसान समझ ही नहीं पाता। तीन शोशे पूरे हो गए, पहला रायना का तौहीन रिसालत, दूसरा नासिख और मनसूख का, ये हुक्म और क्यों हो जाते हैं, और तीसरा क्या था, सवाल जवाब पूछो। अब अल्लाह तीनों पे अपना कमेंट देते हैं कि वद्दा कसीरु मिन अहलिल किताब, चाहते हैं अहले किताब के बहुत सारे लोग, लव यरुद्दूनकुम, काश फेर दें वो तुम सबको, नोट करें कुम सहाबा को, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं थे वो फेर सकते, और आज उम्मत मुस्लिमा के लिए भी उनके यही टारगेट है। कहाँ फेरने, मिन बाद ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के बाद, यानी तुम्हारा ईमान छुड़ाएं तुमसे और फेर के किधर ले जाएं, कुफारन काफिर बनाकर। अब अगर मैं इसकी वाह है वो फेल और इसम पे ले जाऊं तो आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन यहां जुमला समझिएगा कि तुम्हें ईमान के बाद काफिर बना दे, नाम तुम्हारा मुसलमान हो, तुम्हारा नाम हो मोहम्मद इब्राहिम, दो नबियों के नाम जोड़ें तो आपका नाम बने, बट तुम्हारे अकायद बन जाएं नमरूद वाले, और नाम हो तुम्हारा अब्दुल्ला और असल में तुम अब्द शैतान। करते क्यों है ऐसा, हसद मिन इंदी अनफुसिहिम, हसद है उनके सीनों में, जबकि मिन बादी मा तबय्यन लहुमुल हक, ये बड़ी तकलीफ की बात है, हालांकि उनके लिए हक वाजे हो गया। मदीना वालों को साफ पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, उनको साफ पता था कुरान अल्लाह की तरफ से है, लेकिन फिर भी ऐसी बातें करते थे। आज भी यही सवाल है, बहुत सारे लोग जो हक को झुटलाते हैं, हक वालों को झुटलाते हैं, दिल उनके भी मानते हैं कि बात इनकी सच है, वो भी आके ऐसी बातें करते थे, करो क्या। अब हम कहते हैं अच्छा, इनके दिलों में हमारे लिए इतना कुछ है, और ये सारा कुछ जो कर करा रहे हैं अहले किताब क्यों करते हैं, कुफर की वजह क्या है, हसद मिन इंदी अनफुसिहिम, यहां हसद की बुराई नोट करें। पहला गुना आसमानों में जो हुआ हसद था, पहला कत्ल इस जमीन पे जो हुआ वजह हसद थी, भाई को भाइयों के हाथों कुएं में जिसने गिरा दिया वजह हसद थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम का तस्करा, जंपल जगह मदरलैंड मक्का से जिस चीज ने मोहम्मद सल्लम और साथियों को निकलवा दिया वजह हसद थी। इतनी बुरी चीज है हसद कि नेकियों को खा जाता है जैसे लकड़ियों को आग खा जाती है, इतना हसद है इनके दिलों में तुम्हारे बारे में कि अपने हसद की आग में खुद ही जल रहे हैं। अब करें क्या, फाफू दरगुजर करो, जाने दो, मट्टी डालो, वस्फहू दरगुजर करो, वाफू तो समझते हैं ना, आइन फावा छोड़ दो। हदीस में आता है कि दाढ़ी को माफ करो, यानी दाढ़ी को उसके हाल पे छोड़ दो, कट ना करो, ये वही लफ्ज है दरगुजर। वस्फा क्या, ये देखिए, ये सफा कहते हैं ये पाम को, हथेली, आप देखिए ये मुलायम है, अगर कुछ लिखना पड़े तो अक्सर लोग कहाँ लिखते हैं, हमारे पाकिस्तानी लोग तो अक्सर फोन नंबर हाथ पे लिखते हैं, फिर हाथ धो दिए और सारी इंक जली गई, पसीने से वो सारा चला गया, या नेपकिनों पे लिखते हैं, टिश्यू पेपरों पे, या फिर जो माशाल्लाह फ्लायर रिक्लामे लेते हैं उन पे लिखते हैं, फिर वहीं छोड़ जाते हैं ऐसे ना। तो सफ़ा कहते हैं हथेली को, वर्का मुराद ये है पलट दो, दर गुजर करो, हत्ता याती अल्लाह बि अम्री ही, यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए। किस बात का? मदीना में मुसलमानों को अरूज मिल जाएगा और इस दुनिया में आज के मुसलमानों को अरूज मिल जाएगा, तो फिर एक वक्त क्या आएगा कि फिर मुसलमान कुफार के इन प्रोपेगंडों से मुतासिर नहीं होंगे। आप कहते हैं हाय ये होगा हमारी जिंदगी में, ये होगा? अल्लाह कहते हैं इनल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। ये आज के मुसलमान को अल्लाह ताला ने निबटने का तरीका बता दिया। तुम्हें भी आज अपने इर्द गिर्द इस्लाम के खिलाफ ये सारी साजिशें दिखे, करो क्या? उनको छोड़ दो, दरगुजर कर दो, माफ कर दो, अल्लाह की कुदरत का यकीन रखो, बल्कि करो क्या? वाकीमुस्सलाह, तुम अपनी नमाजें तो ठीक कर लो, वातुज़्ज़का ज़कात तो दो, वमा तुकद्दिमु ली अन्फुसिकुम, और जो तुम आगे भेजोगे अपने नफ्सों के लिए, मिन खैरिन खैर में से, तजिदूहु मिन इंदिल्लाह पाओगे उसको अल्लाह के पास। तीसरी दफा आज के सबक में लफ्ज़ खैर आया, पीछे दो जगह क्या मानी थे? कुरान वही, यहाँ क्या है? माल भी है और भलाइयाँ भी हैं। इन अल्लाह बिमा तअमलून बसीर, और अल्लाह जो कुछ तुम करते हो इसको खूब देख रहे हैं। ये है आज के मुसलमानों को सिखाया जाने वाला सबक। कोई नबी का कार्टून बनाए तो हम अपनी ही एम्बेसियों के जाके शीशे तोड़ दें, और आज कोई जवान बच्चा दाढ़ी रख ले कहते हैं ये क्या कार्टून बन गए हो, है कि नहीं? किसी को आज सुन्नत हुलिये में कोई ज़रा देखे तो सही, टखनों से ऊंची शलवार है और सर पे टोपी है, मस्जिद में भाग के जा रहे हैं, कहते हैं ये नहीं बदलेंगे, ये कल भी ऐसे थे आज भी ऐसे ही हैं। हम मुसलमान चाहते हैं ना कि पूरी दुनिया में आज मुसलमान गालिब हो और इस्लाम पे बात ना हो, ये उसका नुस्खा है, लिख लें। हर दौर के गैर मुस्लिमों के प्रोपेगंडों से बचने का राज, अकीमुस्सला वातुज़्ज़का, अपनी नमाज रोज़ा ठीक करो, अल्लाह के रास्ते में माल निछावर करो, और जो नेकी तुम आगे भेजो, देखिए मा तुकद्दिमु, आपके मेरे पास बहुत थोड़ा वक्त है, यहाँ रहकर जितना कमाना है कमा लें, क्या मतलब क्या समझे कि नॉर्वे में रहते हुए कमा लें जल्दी जल्दी, फिर पाकिस्तान चले जाना है तो पैसे बड़े थोड़े हो जाएंगे। मैंने कई लोगों से ये भी सुना है, अब और ही मेहनत करनी शुरू कर दी है यहाँ, क्यों भाई? नहीं फिर पाकिस्तान चले जाना है ना तो कुछ पैसे जमा कर लो। अल्लाह के बंदो, यहाँ कोई नेकियों का बीज लगा जो अपने हाथों से, बीज होगा कल आओगे तुम्हारी नस्लें खाएंगी, यहाँ कोई पौधा बनना होगा दीन के नाम का, नहीं। आज मैं और आप अपने इस वक्त में से जितना अल्लाह को दे रहे हैं, वक्त या माल या खैर, तजीदो हो इंदल्ला, आखिरत की बेल्ट पे उस सब को पालोगे। और मक्का वालों के और मदीना वालों के साथ तो जो वादे पूरे हो गए उनको छोड़ दें, वहां तो कुफर और इस्लाम की जंग सिर्फ 23 साल की थी ना, उसको तो छोड़ें। क्यामत तक के मुसलमानों को अल्लाह ने सबक दिया है, तुमसे दुश्मन तब डरेंगे जब तुम अल्लाह से डरोगे, दुश्मन तुम्हारी इज्जत तब करेंगे जब तुम अपने इस कुरान और अपने इस दीन की इज्जत करोगे, लोग तुम्हारी बात कब मानेंगे? जब तुम अल्लाह की मानोगे। तुम वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हो, तुम इमामत का काम करो, मनसब पे चलो, अपनी नस्लों की हिफाजत करो, उनकी सोचों को बदलो, वाफ वस्फ उनके अकायद को छोड़ दो, उनको उनका जीना सिखा दो। अगर आपसे कोई पूछे ना क्या करें मुसलमान, क्या खूबियां पैदा करें अपने अंदर बचने की, तोफ़ो दरगुजर, खिलाफ मिजाज हालात बर्दाश्त करो। इंग्लिश में जुमला बहुत फायदा देता है इस लफ्ज पे, डोंट बी रिएक्शनरी, रिएक्शन ना शो करो, नारे ना लगाओ सूखे गर्जो बरसो नहीं, अपने अंदर अखलाकी रूहानी कुव्वत पैदा करो नमाजें पढ़ के, मुश्किल हालात में बस तईन बिसब्री व सलात करो, तो अल्लाह देखना कैसे हालात बदलेगा। और याद रखिए कि आप चाहे सुबह शाम लगा लें, महीनों सालों में काम कर लें, हम मुसलमानों की किस्मत तभी बदलनी है जब हमने इन आयतों पर अमल करना है, फिर फायदा होगा। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कितनी नसीहतें कर दी, पहले तो देखे इल्म से बात शुरू हुई, शुरू में नए इल्म की महफिलों का ख्याल करो, सवाल जवाब से ज्यादा इबरत का जेहन रखो, और हसद वालों से बचने का तरीका अपनी नेमतों को ज्यादा जाहिर ना करो, اور یہاں نماز اور زکوٰۃ کی بات کر کے ہم سب کو سکھا دیا کہ اللہ تمہارا ضائع نہیں کرے گا. صہیب رومی کو اس بات کا یقین آ گیا تھا, سب چھوڑ کر آ گئے. عبد الرحمن بن عوف کے رستے میں دنیا پڑی, انہوں نے دنیا چھوڑی, ہجرت کر لی. ہم ہجرت چھوڑ دیتے ہیں, دنیا پکڑ لیتے ہیں. حضرت عثمان نے ملک شام کے لیے قافلہ تیار کیا. پلان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے اور 200 اوکھیا تقریباً 29.5 کلو کے حساب سے بنتا چاندی تھی. سب صدقہ کر دیا. اس کے بعد ایک اور اونٹ کرتے کرتے 9 بار انہوں نے اللہ کے رستوں میں صدقہ کیا, کیونکہ یقین تھا کہ وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُمْ. ہمیں تو بعد دفعہ فرائض بھی چبھتے ہیں, اپنی ذات پہ جو علم پیسہ لگتا ہے ہم وہ بھی چبھتے ہیں کہ نہیں, دین پہ یہ پیسہ تو نہیں ہونا چاہیے. اور آخری آیت, پھر خوش فہمیاں رہ جاتی ہیں لوگوں کی اگر دین چھٹ جاتا ہے, کہ وَقَالُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. اور انہوں نے کہا کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا, جانے کی ایک ہی شرط ہے, یا تو یہودی بنے یا نصرانی بنے. یہ ہیں آج مذہب کے ٹھیکے دار. دونوں نے کہا اپنا اپنا نام لے کر, یہ بھی ٹھیک ہے. یہودی کہتے تھے صرف یہود جنت میں جائیں گے, نصرانی کہتے تھے نصرانی جائیں گے. یا پھر اسلام کی دشمنی میں دونوں جڑ گئے تو کہا نہیں مسلمان نہیں جائیں گے, یا یہودی یا نصرانی جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امانیہم, یہ جھوٹی آرزو ہے ان کی. پیچھے لفظ پڑھا نا امنیہ امانی, یہ وشفل تھنکنگ ہے ان کی. کل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین, کہہ دیجئے کہ لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. برہان براہا سے, براہا کہتے ہیں روشن ہونے کو, مبرم, کھلا, کلیئر, شائنی. اللہ کہتے ہیں لاؤ, کدھر لکھی ہے یہ آیت کہ یہودی یا نصرانی کا نام لگانا پڑے گا اپنے لیے؟ میں آیت ذرا تھوڑے سے بدل کے پڑھوں گی آپ کو سمجھانے کے لیے. وہ تو جو کہہ گئے چھوڑ دیجئے ان کو, یہودی بنو نصرانی. آج کیا بہت سارے مسلمان نہیں بولتے کیا؟ دیکھیے گا, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ حَنَفِيًّا شَافِعِيًّا بریلویین, اور جو مرضی لگا لیں, اور کچھ نہیں ہے نا. تو اوور آل ہم سب مسلمانوں کو ایک تو گمان ہے کیا, لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ مُسْلِمًا, بس مسلمان جائیں گے کیونکہ نام مسلمان ہے. کام کوئی ضرورت نہیں کرنے کی, نام جو ہے مسلمان اور نبی کی امتی ہیں. کوئی کہہ دے گا نہیں جائے گا جنت میں مگر سیدن, سید جائیں گے صرف. کوئی شیعہ کہہ دے گا یہ ہیں یہودی اور نصرانیت کی باقیات جو آج ہمارے فرقہ واریت کے نام ہیں. یہ یہودی نصرانی بھی فرقہ واریت ہی نام ہے, یہ اللہ نے نام نہیں دیے تھے. جنت کسی کا کوئی ابائی گھر ہے کہ آپ اس کو مرضی سے اپنی اندر جانے دیں آنے دیں؟ ٹھیکے دار کوئی نہیں ہے مذہب کا, تو پھر کون جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں اس کا جواب دیا ہے, اور یہی میری آپ کی آج کی سوچ ہونی چاہیے اس سبق کو پڑھ کے, کہ بلا من اسلم وجہہ ہو. یہ بھی نہیں کہا کہ مسلمان ہوگا, بلا من اسلم. دیکھیے من اسلم کو چھوٹا کر دوں نا سمجھانے کے لیے تو مسلم ہی ہوتا ہے نا, لیکن اللہ نے یہاں لفظ مسلم نہیں لگایا کیونکہ ہم مسلمان خوشی نہ ہو جائیں کہ نہیں یہودی نصرانی نہیں مسلم جائیں گے. نو, نام والے مسلم نہیں جائیں گے بلکہ من اسلم وجہہ للہ, وہ جائے گا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا. یہ جو وجہ ہو ہے نا, چہرہ کرنا, چہرے میں کیا کچھ ہے؟ آنکھیں, کان, زبان, دماغ, سوچ, سب کچھ پہلے آگے جھکاؤ. سجدے میں 7 ہڈیاں سجدہ کرتی ہیں لیکن تمہاری عقل بھی جھکے. عرب لوگ کسی کو کہنا کدھر کا ارادہ ہے تو کہتے ہیں نا وجہ ہو, آج کدھر جا رہے ہیں آپ. یعنی اپنی سوچ, اپنی زندگی کی پرائیورٹیز لگاؤ پہلی صورت, اور دوسری وہ محسن, محسن ہو. یہ محسن کون ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے والا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا رنگ جس کی زندگی میں ہو. فلہ اجرہ عند ربی, پس اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. کیا اجر یہاں مراد ہے؟ یدخل الجنہ کا, پیچھے سے جوڑے نا. جنت میں جانے کا اجر کس کو ملے گا؟ جو خود کو مسلم کہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کرے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ غمزدہ ہوں گے. یا ولا خوف علیہم سے کیا مراد ہے ولا یحزنہم؟ یہ جنت کی تعبیر ہے, کیونکہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں جا کر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. تو ساری بات کا خلاصہ, مسلمانوں کو دنیا آخرت کے سارے غموں اور سارے دکھوں سے نکالنے والی چیز, حقیقت میں مسلم بن جاؤ. اور عربی زبان میں مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں जो आप मालिक के कहने पे खड़ा हो जाए, मालिक दे तो खा ले, ना दे तो कई के दिन ना मांगे, चलने को खेंचे नकेल तो चल पड़े। अब आप मैं देख ले कि हम कैसे मुहसिन हैं। ये नखरे करने वाला नहीं, सवाल पूछने वाला नहीं, दीन में मुश्किलात पैदा करने वाला नहीं, और जो हकीकत में नफ्स सल्लम के तरीकों पे चलेगा जन्नत उसको मिलेगी। तो यहाँ अल्लाह के हामल कबूल होने की क्या शरायत है? दो, इखलास यानी लिल्लाहियत, और दूसरी मुहसिन यानी सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक हो, वरना अमल कबूल नहीं होगा। तो फिर जो राहिब हैं, जो साधु हैं, जो सूफियों के अमल हैं, फिर उनको भी आप इसी अमल पे परख लीजिए। अच्छी नीयत से गलत काम किया वो भी ठीक नहीं है, और अच्छे काम को गलत नीयत से करें वो भी ख़राब नहीं है। असल बात यह है कि फ़मैया अमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दर्जे दे। यहाँ जो इस्लाम के सब मोहसिन लफ्ज आए ना, ये इस्लाम के दर्जे भी हैं। शुरू में इस्लाम होता है, फिर मोहसिन बनता है, ये मैंने पीछे भी तस्करा किया था, आगे कहीं शुरू में आएगा सबक के तो फिर और भी कर दूंगी आपके लिए। दुआ करें कि अगर हम मुस्लिम हैं तो अल्लाह हमें मोहसिन बना दें, और अगर अभी मुस्लिम ही नहीं बने तो अल्लाह मुस्लिम बना दे। सबक के शुरू में नंसख की बात थी, तो बस जो बेचारे गैर मुस्लिम हैं या बिगड़े हुए मुसलमान हैं, आप सिर्फ उनको मुस्लिम बनाने की दावत दें। मोहसिनों को लंबे लंबे अमल ना बताएं, छोटे छोटे अमल, छोटी छोटी नेकियां बताएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानियों के साथ वो सारे मामले कर देगा। और जब मोहसिन बन जाता है ना, तो गिरोही तासुब खत्म हो जाता है, जाती वफादारियां निकल जाती हैं, और दुनिया की मसलतों से भी बंदा पाक हो जाता है। हर वो चीज़ जो इस्लाम के रास्ते में रुकावट आती है, बंदा उसको हटाता है तो फलहु अजरुहु इंदा रब्बी ही, अल्लाह के पास उसका अजर है, और अल्लाह ताला हमें इस पे डाल दे। जन्नत में जाने के बाद जन्नती क्या कहेंगे? सूरत फातिर आयत 34 में आता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यज़हब अन्नल हज़न। सारी तारीफें उस जात के लिए जिसने हमसे हुज़न को दूर कर दिया। तो आज गम है ना, नेमतों के साथ भी गम है। दुआ कीजिए कि अल्लाह सुबहान तआला आपके मेरे लिए जन्नत का फैसला कर दे। तो ये था आज का सबक। पूरे सबक को अगर आप देख लें तो बिल्कुल फिरोया हुआ है। मैं साथ साथ भी कोशिश करती रहती हूँ कि आपको वो चीज़ें दे दूँ जो आपको फिर इसका खुलासा सिखा दें, लेकिन अगर चंद जुमलों में लिख लें तो मकसद, अपनी हस्ती को अल्लाह की इताअत में सौंप दो और नेक रविश इख्तियार करो। कामयाब करने वाले जो रवैये हमने इस रुकू में देखे, नंबर एक अफ्व दरगुजर, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, आखरत के लिए भलाइयाँ कमा कर भेजना, इस बात का यकीन रखना कि भलाई का अजर आगे जाकर मिलेगा, और अपनी हस्ती को अल्लाह की इताअत में रखना और एहसान की रविश इख्तियार करना। नाकाम लोगों की बातें जो हमने इस सबक में पढ़ी, हक की दावत को कबूल करने से इनकार, मुसलसल इनकार था यहूद मदीना का, और ये चाहना कि किसी और पर रब की भलाई ना हो नाजिल, फिर रसूल से सवालात और मुतालबे करना, ईमान की रविश को कुफर से बदलना, सीधे रास्ते से भटकना, और हसद करना, और दूसरों को भी पलटाने की कोशिश करना, और आखिरी रवैया झूठी तमन्नाएं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को भी खोल दे, और बेहतरीन तरीके से इन सारी बातों को पढ़ें, और हमने यहूद के मुख्तलिफ रवैये जो देखें, इसके आईने में अपने आप को देखें, मजलिस के जो आदाब सीखे अल्लाह उस पर अमल की तौफीक दे, शुबे वाली बातें नहीं करनी, गौर से सुनना और समझना है, सवाल जवाब की बजाय इबरत का जहन, और मनसूख आयतों की वजह क्या है? तदरीज, बेहतरी, और मुसलमानों को नसीहतें कर देंगी कि बहसों मुबहसों में ना पढ़ो और अल्लाह पर भरोसा करो, अफ़ो दरगुजर से काम लो, नमाज कायम करो और ज़कात दो, और आखिरी बात के जन्नत किसके लिए? जो अल्लाह की इताअत करे, नेक रवैया इख्तियार करे और ख़ुद को अल्लाह के हवाले कर दे। अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपना रहम करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक।
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خ